समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी लालिमा अनेजा डैंग। लालिमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार वैष्णवी, एंड नमस्कार टू ऑल आवर फ्रेंड्स हू आर ट्यून्ड इन राइट नाउ एंड लिसनिंग टू परिक्रमा, द शो दैट कम्स टू यू एवरी डे विदाउट फेल ऑन 100.1 FM. And as Vaishnavi just mentioned, yes, I'm your hostess Lalima Aneja Dang, and well, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, there are reports, there are capsules, there are tributes and much, much more. All these packed tightly over the next 30 minutes. Let's begin with the news headlines first. Yes, Vaishnavi.
भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया।
सेंटर वर्किंग ऑन सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज इनकम टैक्स विल नो लॉन्गर बी सीन एज अ टायरसम एक्सरसाइज।
सरकार ने इंडिगो को किरायों का लंबित भुगतान यात्रियों को बिना किसी देरी के जारी करने के निर्देश दिए।
President, Vice President and Prime Minister lead the nation in paying homage to Dr. B.R. Ambedkar on 70th Mahaparinirvan Divas.
और विशाखापट्टनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी।
And now friends, let's talk about something very important. Each one of us in India has gone through, what should I say, extreme anxiety when it comes to pariksha, that is exams. And that is exactly what we are going to discuss on Dateline India. Well, we're not going to discuss the tension that comes in pariksha. We're going to talk about, amongst the many solutions, is our Prime Minister's initiative called Pariksha Pe Charcha. And friends, this is a very, very special program which the Prime Minister initiated. And yes, we are diving deep into the excitement building up for the 9th edition of Prime Minister Narendra Modi's iconic global interaction, Pariksha Pe Charcha 2026. And let's tell you that a lot of people are now discussing it because it is providing great insights through the Honorable Prime Minister's speech. He shares his thoughts on how children can reduce anxiety. The main point for those uninitiated at the moment is who all can participate in this Pariksha Pe Charcha. Of course, you see this on the MyGov portal. You see it in many WhatsApp groups and lots of people are now talking about it. Well, the students from classes 6 to 12 and teachers from all across the country and parents who are guiding the young achievers every day, all these people are invited to participate in the Honorable Prime Minister's extremely wonderful initiative called Pariksha Pe Charcha.
श्रोताओं, चाहे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र हो या अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले अभिभावक हो या देश के भविष्य को आकार देने वाले शिक्षक हो, ये प्रतियोगिता आप सबके लिए है और प्रत्येक प्रतिभागी को MyGov की ओर से एक आधिकारिक भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा।
Ah, well said, Vaishnavi. Yes, friends. And Pariksha Pe Charcha, come to think of it, is no longer just an Indian program. It has become a global conversation, a celebration of learning without borders. Let's take a moment to reflect on the incredible milestone of 2025, Pariksha Pe Charcha, which smashed all records and created history by setting a Guinness World Record.
जी बिल्कुल, श्रोताओं कल्पना कीजिए, 245 देशों के छात्र, 153 देशों के शिक्षक, 149 देशों के अभिभावक, ये सिर्फ भागीदारी नहीं है बल्कि ये एकता और वैश्विक जिज्ञासा है। 2018 में पहले संस्करण में सिर्फ 22,000 छात्रों की भागीदारी से लेकर 2025 में 3 करोड़ से अधिक छात्रों के पंजीकरण तक का सफर वाकई अद्भुत है। और अगर हम इसमें देशव्यापी जन आंदोलन गतिविधियों को भी शामिल करें तो 1,55,00,000 लोगों को भी जोड़ लें तो कुल प्रतिभागियों की संख्या लगभग 5 करोड़ हो जाती
है। My God, it's such a huge logistics are so huge and how they are managing. I was wondering what would have happened, Vaishnavi, अगर कंप्यूटर्स ना होते। कंप्यूटर्स हैं तो ये सब एनरोलमेंट हो रही है इतने बड़े पैमाने पर। एनीवे फ्रेंड्स, वेल दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द नेशन एंड द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर एजुकेशन। इंटरेस्टिंगली वैष्णवी, आई वाज देयर डूइंग द कमेंट्री फॉर वन ऑफ द परीक्षा पे चर्चाज एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी इन भारत मंडपम एंड इट वाज माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ चिल्ड्रन आस्क क्वेश्चंस एंड द प्राइम मिनिस्टर सो थॉटफुली, सो केयरफुली, विद सो मच पॉइज एंड विद सो मच अंडरस्टैंडिंग, विद so much of depth he gave the answers, you know, and he keeps saying that celebrate exams. आप उसको stress मत लीजिए, उसको एक हल्का फुल्का कीजिए। और बहुत सा pressure तो बच्चों के माँ बाप से आता है, unfortunately वो जो माहौल बन जाता है, ऐसा लगता है कि if I'm not tense I'm not doing the right thing. So the prime minister really like an elderly person of the family, he counsels very softly, very gently, very precisely and absolutely beautifully.
जी बिल्कुल, एकदम अद्भुत ही माहौल होता है वहाँ उस। और अगर प्रत्येक सत्र में की बात करें तो प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मैत्रीपूर्ण, विनोदी और प्रेरक वातावरण में छात्रों से संवाद करते हैं। कोई औपचारिक भाषण नहीं, कोई कठोर प्रोटोकॉल नहीं, केवल हार्दिक, प्रासंगिक, व्यवहारिक बातचीत। परीक्षाएं सिर्फ भय का स्रोत नहीं है बल्कि सीखने का एक मौका है।
Yes, and students usually, you know, ask questions like how to handle exam pressure, how to manage time. Time management is extremely important and memory. Since our system, our curriculum is so memory based, you know, जिसको हम रट्टाफिकेशन कहते हैं in colloquial language. So usually children ask कि कैसे memorize करें? Then motivation is very important and how to stay calm, because I think if you've done everything but if you're panicky at the last minute, you just can't, all the memory goes for a six, for a toss. So and parents have to be very careful supporting their children, giving them fat free food, less fat food, so that they don't feel sleepy, and supporting them and saying, rather than, you know, intimidating children, parents should say okay koi baat nahi, I will love you even if you get less marks, so what. aaj to इंडिया में इतने एवेन्यूज हैं कि अगर कम मार्क्स भी आए, अब सब हर कोई तो फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड नहीं आ सकता। कम मार्क्स है तो भी क्या, आई स्टिल लव यू। एवरी पेरेंट शुड से टेल द चाइल्ड आई स्टिल लव यू इवन इफ यू गेट लेस मार्क्स।
बल्कि कहते हैं कि भले आपने स्कूल की परीक्षा में भले आप मार्क्स नहीं ले पा रहे, लेकिन जिंदगी का जो परीक्षा में अगर आप सफल हो रहे हैं तो वो ज्यादा मायने रखता है आपके लिए।
और सोचिए, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नाउ द गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर स्किल्स। That people who get marks, sometimes they are not even capable of writing an application because skills nahi hai. So now it's so, that shows the government seriousness towards empowering our youngsters with skills, that we have a separate skill ministry. And if you have the skills, you can actually make it in life. You don't have to have marks. Sab kuch marks pe itna hum dependent kar dete hain ki as if wo be all and all hai, par hona nahi chahiye. और आगे बढ़ते हैं। मुझे एक और, जब हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर और बच्चों के बीच वार्तालाप की, तो आई रिमेम्बर देयर इज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, आई विल टेल यू, दैट अ स्टूडेंट गॉट अ चांस टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन अबाउट एग्जाम स्ट्रेस एंड शी सेड, सर हाउ डू वी डील विद द फियर ऑफ फेलियर, एंड यू नो व्हाट द प्राइम मिनिस्टर आंसर्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू इट। इमेजिन, you know, so deep and profound. And I remember when we had sent our, when Chandrayaan 2 had failed, the Vikram couldn't land on the moon, how the Prime Minister hugged the chairman at that time. Yeah, ISRO chairman. As if, you know, he was an elderly person in the house, rather than reprimanding him and saying, okay, nahi, the chairman was in tears. And unhone aise unko gale lagaya.
The support, matlab actually motivate kitna hota hai us samay mein insaan ko agar kyun is tarah se saajas de rahe.
तो फेलियर में भी गले लगाया।
जी बिल्कुल। और परीक्षा पे चर्चा आपको सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही तैयार नहीं करता, बल्कि ये आपको जिंदगी के लिए तैयार करता है। अब कल्पना कीजिए श्रोताओं, क्या होगा अगर आपको इस साल वहां जाने का मौका मिले। कल्पना कीजिए कि आपका सवाल सुना जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक वैश्विक बातचीत का हिस्सा हैं जिसे लाखों लोग देख रहे हैं। ये सपना एक आसान कदम से शुरू हो सकता है. इसके लिए आपको माई गॉव ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेना है.
आई एम गोइंग टू एक्सटेंड व्हाट यू जस्ट मेंशन फ्रेंड्स. वेल, यू हैव टू, हाउ डू यू टेक पार्ट इन परीक्षा पे चर्चा, लेट मी जस्ट गिव यू अ, यू नो, काइंड ऑफ अ रोड मैप. यू हैव टू विजिट द माई गॉव portal. MyGov means MYGOV portal, and then you look for Pariksha Pe Charcha 2026 competition, and then you attempt the fun and informative MCQ quiz. Submit your response and then download your official certificate, and then share the news with your friends, your school and your community.
आइए जनवरी 2026 को अब तक की सबसे भव्य शिक्षा उत्सव में बदल दें. आइए सुनिश्चित करें कि हर बच्चा परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास के साथ कदम रखे, ना कि डर के साथ. आइए एक ऐसा देश बनाएं जहां ज्ञान रटा रटा ना जाए, बल्कि समझा जाए, अनुभव किया जाए.
Yes, and as we wrap up this segment, friends, we must remember that exams are not the end of the world. They are stepping stones on your journey. They are tools, not trials, opportunities and not obstacles.
परीक्षा पे चर्चा हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास सकारात्मकता में निहित है, विकास सीखने में निहित है और सफलता खुद पर विश्वास करने में निहित है.
सो फ्रेंड्स, लेट्स जॉइन हैंड्स एज स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड सिटीजंस एंड मेक परीक्षा पे चर्चा 2026 अ सेलिब्रेशन लाइक नेवर बिफोर. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप सोरिंग हाई.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
जी, जी.
सबसे पहले बिहार की ओर रुख करते हैं. बिहार की बोधगया में 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन किया जा रहा है. भारत में पहली बार इस समारोह का आयोजन हो रहा है. 13 भारतीय बौद्ध संगठनों के तत्वावधान में आयोजित ये समारोह 12 दिसम्बर तक चलेगा. और ब्यौरे के साथ है हमारी संवाददाता.
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि.
विश्व की बौद्ध आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले बोधगया में भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह की मेजबानी कर रहा है. 2 दिसंबर से शुरू हुए इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया. लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक रंजन कुमार कहते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के बाद इस आयोजन की महत्ता और बढ़ गई है.
20 साल के बाद जब से ये त्रिपिटक चैंटिंग यहाँ पे शुरू हुआ, ये तो 20 साल के बाद भारत को इसका आयोजन करने का अवसर मिला. हर 2 साल पे एक नए कंट्री को अवसर मिलता है, जो भी इसके मेंबरान हैं उनको इसका आयोजन करने का अवसर मिलता है. इसके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो 13 कंट्री हैं, ये सारे कंट्री इसके मेंबर्स हैं. इस बार इसलिए भी खास है कि हम जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, बिहार सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से सब लोगों का सहयोग मिला है, और जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है, तो और भी इसकी महत्ता बढ़ जाती है.
समारोह में महाराष्ट्र से आए एक बौद्ध भिक्षु ने बताया कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों का मानक संग्रह है. समारोह में इस बार भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित विनय पिटका का जाप किया जा रहा है.
हमारा नाम है बदंत धम्म प्रकाश संबोधी. बात यह है कि इस साल में खुशी की बात यह है, पूरे भारत वर्ष में इस बार हमको चैंटिंग का ऑर्गेनाइज करने का समय मिला है. ये त्रिपिटक का चैंटिंग जो थेरवादा में ज्यादा इन्वॉल्व होता है. त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पेटारे या 3 पेटियां या 3 बॉक्स, और त्रिपिटका का विनय पिटका जो है वो इस बार चल रहा है, उसमें से ये 3रा बॉक्स है और उसमें ये विनय पिटका है, यानी इसको इंग्लिश में डिसिप्लिन कहा जाता है. ये मॉन्क लोगों का डिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन को यहाँ पे संज्ञायन हो रहा है.
त्रिपिटक जाप के तहत आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष शोभा यात्रा निकाली गयी. इस दौरान पूरा मार्ग बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्रोच्चार, बौद्ध भिक्षुओं के गीतों और बौद्ध मंत्रों से गुंजायमान हो गया. 11 दिन तक चलने वाले समारोह के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे. परिक्रमा के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती की रिपोर्ट के साथ मैं डॉक्टर सविता पारीक.
संघं शरणं गच्छामि.
So beautiful indeed. Chants in any religion, whatever the religion may be, they spread positivity to the person inside also and outside also, isn't it so? All right, let's move on. Let's go from Bihar to now Jammu and Kashmir. Well, Jammu and Kashmir has achieved 40% progress in the rollout of smart electricity meters under the revamped distribution sector scheme, RDSS, with the installation of over 3.81 lakh devices across the Union Territory in more than a year. The first phase of the project started in November 2020 with an initial target to install 20,000 meters in selected areas of Jammu and Srinagar cities, and it was eventually completed in 2022 with 1.5 lakh smart meters installed. The second and third phases that began in 2024 with the cumulative target of over 9.5 lakh smart meter installations by 2026 are currently under implementation.
The Jammu Power Development Corporation Limited, JPDCL, has installed 1,87,894 meters out of the total sanctioned 7,62,872 meters, while Kashmir Power Development Corporation Limited, KPDCL, installed 1,93,777 meters against the target of 7,27,855 meters, making steady progress toward a transparent and consumer-friendly power distribution mechanism across J&K. Chief Secretary Atal Dillu reviewed the reform measures being implemented by the Power Development Department with a focus on enhancing operational efficiency, strengthening infrastructure, and substantially reducing power losses under the revamped distribution sector scheme. According to official data, 381,671 smart meters were installed, registering 40% installation of the total 9,50,755 meters targeted across Jammu and Kashmir. Works worth ₹4,709 crore under loss reduction and ₹1,053 crore under smart metering are targeted for completion under RDSS. The work have been divided into multiple packages and awarded to four project implementing agencies including JPDCL, KPDCL, Power Grid Energy Service Limited and National Thermal Power Corporation for their completion within deadline. Progress in loss reduction and information technology and operational technology work stood at 74% for JPDCL, 73% for KPDCL, 57% and 33% for PES in Kashmir and Jammu respectively, and 72% and 31% for NTPC in these divisions. The aggregate technical and commercial losses have already been reduced from 58% 2022 to around 32% at present, with the target to bring them down to 12% by 2028. Similarly, the average cost of supply and average revenue realized gap has been reduced from ₹3.11 to ₹1.29 per unit, while billing efficiency has improved from 56% to 69% and collection efficiency from 75% to 94%, reflecting significant stride toward financial sustainability and operational efficiency in the power sector. The Chief Secretary directed that all ongoing reform work aimed at loss reduction must be completed within the sunset period prescribed under RDSS by the Government of India. This is N. Gulshan Rana for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
All right, that was some report from Jammu and Srinagar. If those statistics kind of, you got too entangled in those, we'll disentangle you there and take you to another beautiful place. And that is, yes, Delhi, where Asaras Ajivika Food Festival 2025 is going on. And, you know, in Delhi, well, why would you say in Delhi? In India, generally, you go to Bihar, you have Litti Chokha. You go to Rajasthan, you have Dal Bati Churma. You go to Gujarat, you have Dhokla. And every few kilometers, the cuisine changes. So much so that the dosa of Tamil Nadu will be different from the dosa in Kerala. Isn't it? Wouldn't you agree? Isn't it?
Bilkul.
Toh phir aur bhi maza aayega agar aap आप सारस आजीविका फूड फेस्टिवल में जाए. इट स्टार्टेड ऑन द 29th ऑफ प्रीवियस मंथ एंड इट इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ विजिटर्स. सो ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द फेस्टिवल स्टैंड्स एज अ शाइनिंग शोकेस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट. मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पोंडेंट, लेट्स सी.
More than 500 dishes from 25 states are adding culinary richness to Saras Ajivika Food Festival 2025, giving visitors a vibrant, delicious tour of India's culture. Nearly 300 Lakpati Didis and women from self-help groups have travelled from every corner of the country to bring their best flavours to New Delhi's Sundar Nursery. Talking to Akashwani News, an exhibitor from Jharkhand, Rekha Devi, hailed the ministry's initiative and said that she is getting benefited financially by setting up a food stall in this festival. Entry to Saras Food Festival is free and open to visitors from 11:30 a.m. to 9:30 p.m. till the 9th of this month. Amenities such as Saras Gallery and Mother Care Room are available at the festival. With Shivang Mishra, Drishti Punyani, Akashwani News, Delhi.
श्रोताओं, आपको अब लेकर चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
जी, क्रिकेट की बात करते हैं पहले. इन क्रिकेट साउथ अफ्रीका वर 252/8 इन 42.5 ओवर्स अगेंस्ट इंडिया द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई ऑफ द 3-match सीरीज इन विशाखापट्टनम एंड रिपोर्ट्स लास्ट केम इन. अर्लियर इंडिया वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू फील्ड विद द सीरीज लेवल एट 1-1. द डैश इज अ डू और डाई डिसाइडर फॉर बोथ साइड्स.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
टुडे ऑन द 6th ऑफ दिसंबर वी आर रिमेम्बरिंग भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन महापरिनिर्वाण दिवस. द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब वर्कड टायरलेसली थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर क्रिएटिंग एन इक्विटेबल एंड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया.
Dr. Bhimrao Ambedkar, a fighter in the cause of annihilation of caste, was born in a so-called lower caste on 14th of April 1891 at Mau Cantonment. His life was one of struggle, as his radical proposals to deal with the caste system met with hostility from the so-called upper castes. However, not only did he fight against all institutional and social odds to pursue his education, but spectacularly earned doctorates from both Columbia University and the London School of Economics, gaining reputation as a scholar for his research in law, economics and political science. Upon India's independence on August 15, 1947, Baba Saheb served as the nation's first law minister, and on August 29, he was appointed chairman of the Constitution Drafting Committee. He helped bring in many proposals and laws for social reformation and transformation of India. His efforts for a radical restructuring of property relations have ensured that India as a nation moves together to create new possibilities for all its citizens. Speaking in Constituent Assembly on December 17, 1946, he shared his vision of united India.
Our difficulty is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity.
Dr. Ambedkar perhaps was India's most radical thinker, and he transformed the social and political landscape in the struggle against British colonialism by making the downtrodden politically aware of their own situation. He had famously said to the so-called lower castes, "Educate, agitate and organize." He laid a great emphasis on education, especially to weaker sections, to whom it was traditionally denied. He saw education as a potent tool which could equally empower every citizen to build an egalitarian society, as also to help break the age-old restrictive shackles of discriminatory social practices. Baba Saheb was posthumously conferred Bharat Ratna, India's highest civilian award, in 1990 for his immense contribution in formation of the idea of modern India. We are forever indebted to Baba Saheb, whose values we cherish by following our constitution.
We also remember freedom fighter Rukmani Lakshmipati, who was born on December 6, 1892 in Madras. She is well known for her participation in Salt Satyagraha of 1930 in Vedaranyam of Madras Presidency, for which she was jailed for a year, becoming the first female prisoner in the Salt Satyagraha movement.
Lakshmipati was heavily influenced by leaders like Mahatma Gandhi, C. Rajagopalachari and Sarojini Naidu.
In 1934, Lakshmipati was elected to the Madras Legislative Council. 3 years later, she became the first woman to become a member of the Legislative Assembly. In 1946, Lakshmipati served as Minister of Health in the Madras Presidency Cabinet, becoming the first woman minister in the state. She died on the 6th of August, 1951. In 1997, the Government of India issued a postage stamp in her honour. We salute this great Satyagrahi.
All right, let's talk about people who were eminent people who either passed away or were born on this day. Let's begin with Colonel Hoshiar Singh.
जी, परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के कर्नल होशियार सिंह की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए मेजर होशियार सिंह ने अद्भुत साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। 1971 के इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना।
God bless the souls of our martyrs. Let's talk about Har Prasad Shastri ji. He was born on this day in 1853, often known as Har Prasad Bhattacharya. He was a Sanskrit scholar, archivist, historian of Bengali literature, mostly known for discovering the Charyapad, the earliest known examples of Bengali literature.
वेद, वेदांग, संस्कृत, व्याकरण और भाषा विज्ञान के अप्रतिम विद्वान कपिल देव द्विवेदी का भी आज ही के दिन सन 1918 में हुआ था। उन्होंने इन विषयों पर 75 से अधिक ग्रंथ लिखे। भारत सरकार ने 1991 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया था।
बीना राय, who doesn't remember Beena Rai? She was there in the 1950s. Her first film, actual name was Krishna Sareen. Her first film was Kali Ghata, and later on, after she married with her husband, she produced films like Shagufa, Golconda Ka Qaidi, and Samundar. And in 1968, Apna Ghar Apni Kahani. That was the last film which Beena Rai did.
50 का दशक कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के उदय का गवाह है, लेकिन बीना राय ने इस दशक में अपनी अदाकारी और शालीनता के दम पर लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। आइए सुनते हैं बीना राय का ये खूबसूरत गीत। भारतीय फिल्म तथा छोटे पर्दे के अभिनेता प्रवीण कुमार का आज जन्मदिन है। उन्हें बी.आर. चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका के लिए याद किया जाता है। और प्रवीण कुमार के जीवन की सबसे रोचक बात कहें तो वे कलाकार के अलावा एक खिलाड़ी भी रहे थे।
Right, and let's remember, let's talk about Shekhar Kapoor today. Who doesn't know him? The Indian filmmaker who made, we know him for directing Masu, Mr. India and Bandit Queen, but very well known for Elizabeth, a fictionalized account of the reign of British Queen Elizabeth I. He was also awarded the Padma Bhushan and Elizabeth for that film. He was nominated 7 Academy Awards.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और लाली मैनेजर डैंग को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का।
नमस्कार,
नमस्कार।